अध्याय एक, जापान की भौगोलिक स्थिति। पृष्ठ संख्या एक। अगस्त 1945 तक जापान का आधिपत्य एशिया के पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ कैमचात्का से मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक विस्तीर्ण अधिकांश द्वीपों पर था। उसके अधिकृत क्षेत्र कैमचात्का के दक्षिण में उत्तरी सिरे पर स्थित क्यूराइल द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में फार्मोसा अंतरिप, जिसे जापानी ताइवान कहते हैं, तक फैले हुए थे। इनके बीच की दूरी 2500 मील के लगभग है, अर्थात उतनी ही जितनी क्यूबा और न्यूफाउंडलैंड के बीच है। जापान द्वारा अधिकृत द्वीपों की संख्या 3000 से अधिक थी और उनका क्षेत्रफल 1,73,786 वर्ग मील के लगभग था, जो कैलिफोर्निया राज्य से कुछ ही अधिक है। आकार में ये ब्रिटिश द्वीप समूह के लगभग दुगुने हैं। अधिकांश द्वीपों का आकार बहुत छोटा है और इनमें से केवल 600 के लगभग आबाद है। इनमें होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और सन 1945 तक सखालीन तथा फार्मोसा द्वीप प्रमुख हैं। कुछ समय पूर्व तक होकाइडो में मुख्य रूप से आइनू नामक एक आदिम जाति बसी हुई थी, लेकिन बाद में जापानियों ने इस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास किया। इस द्वीपीय साम्राज्य का आधे से अधिक भाग होन्शु द्वीप के अंतर्गत आ जाता है। ऐतिहासिक काल के आरंभ से ही सरकार का केंद्र स्थान रहा है। सिकोकू अर्थात चार प्रांत के इस प्रदेश का नामकरण द्वीप के प्राचीन प्रशासनिक विभाजन के आधार पर किया गया था। यह अंतरस्थलीय सागर की दक्षिणी सीमा का भाग है, जो अपने जलीय स्थलों, द्वीपों और तटों के सौंदर्य के लिए विख्यात है। क्यूशू का अर्थ नौ प्रांत है। यह नाम भी प्राचीन प्रशासनिक संगठन के आधार पर रखा गया था। शिमोनोसेकी जल संधि इसे होन्शु से अलग करती है, जो एशिया के पूर्वी तट और उत्तरी अमेरिका के बीच में परिवहन का मार्ग है। क्यूशू कोरिया से अपेक्षाकृत कम दूर है और प्राचीन जापान के अन्य प्रमुख द्वीपों की अपेक्षा चीन के अधिक निकट स्थित होने के कारण यह एशिया महाद्वीप से आने वाले अधिकांश प्रभावों का प्रवेश द्वार था। 16वीं शताब्दी में क्यूशू प्रथम द्वीप था जो यूरोप के संपर्क से अत्यधिक प्रभावित हुआ। इसका मुख्य औद्योगिक बंदरगाह नागासाकी आज भी जापान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से है। चीन ने 1895 में फार्मोसा को जापान के हवाले कर दिया था, लेकिन जातीय दृष्टि से वह कभी भी देश के बाकी हिस्से के साथ आत्मसात नहीं हो सका। काराफूतो के उत्तर में कम आबादी वाले क्यूराइल द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है। क्यूशू और फार्मोसा को रियुकू द्वीपों की पंक्ति आपस में मिलाती है, जो गत वर्षों में ही निश्चित रूप से जापान का भाग बन सकी है। इन द्वीपों के अलावा 1945 में हुई पराजय से पूर्व 20वीं शताब्दी के कुछ समय तक जापान का अपने निकटवर्ती कोरिया प्रायद्वीप पर, जिसका क्षेत्रफल जापान के आधे भाग के लगभग है, आधिपत्य था, और साथ ही मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया और चीन के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी प्रांतों के क्षेत्रों पर भी इसका प्रभुत्व था। जापान के इन अधिकृत क्षेत्रों का और अधिक विस्तार से वर्णन आगे चलकर किया जाएगा। जापान ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर में स्थित जर्मनी द्वारा अधिकृत द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया था। पृष्ठ संख्या दो, जापान के लोगों तथा उनके इतिहास पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। जापान के मुख्य अंगभूत भागों और क्षेत्रों के ऊपर दिए गए वर्णन से यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वहाँ के लोगों पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम इतिहास में विख्यात जापान के द्वीपों के एक सुसंबद्ध समूह के रूप में स्थित होने के कारण उनमें एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। आगे चलकर हम देखेंगे कि यद्यपि जापानियों का उद्भव विभिन्न स्रोतों से हुआ है, परंतु उनका अपना एक विशिष्ट वर्ग है और कुछ उत्तर और दक्षिण में स्थित नए अधिकृत द्वीपों के लोगों को छोड़कर बाकी में विलक्षण समानता दिखाई देती है। साथ ही उनमें अत्यधिक विकसित राष्ट्रीय जागृति की भावना भी है। इसके अलावा समुद्र द्वारा अन्य राष्ट्रों से अलग कर दिए जाने से भी उनमें विद्यमान उग्र देशभक्ति की भावना को निसंदेह प्रोत्साहन मिला। जापान को अपने पूर्वजों के आरंभिक देशांतर के समय से लेकर 1945 तक कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा था। 13वीं शताब्दी में अवश्य मंगोलों के महान आक्रमण से जापान एक बार विदेशी शासन के गंभीर खतरे से आशंकित हो उठा था। भूतकाल में जापान पर बाह्य जातियां अपने सैन्य शक्ति के बजाय अपने विचारों से ही विजय प्राप्त कर सकी। वहां पर जिस सभ्यता का विकास हुआ, यद्यपि वह विदेशी प्रभाव से अत्यधिक अभिभूत थी, परंतु वह मूलतः जापानी ही थी। जापान ने विदेशी संस्कृतियों से उन्मुक्त रूप से और कभी-कभी पूर्ण रूप से जो कुछ ग्रहण किया, उसमें विशिष्ट मौलिकता और जापान की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। द्वीप में बसे होने के कारण जापानियों का जीवन स्वभावतः समुद्र प्रधान हो गया। सुरक्षित खाड़ियों की विशाल संख्या के कारण और द्वीपों के बीच बहुत अधिक अंतर न होने के कारण उनकी इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा मिला। यहाँ के दो बंदरगाह, नागासाकी और योकोहामा, दुनिया के सर्वोत्कृष्ट बंदरगाहों में गिने जाते हैं। जापान सागर ने, जिसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं और जो प्रायः तूफान रहित हैं, तथा जापान की आदि सभ्यता के मूल स्थान के अधिक निकट हैं, लोगों को समुद्र पर आधारित जीवन बसर करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। जापान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना रहा है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग में उनके द्वारा बड़े व्यापारी बेड़े का विकसित किया जाना स्वाभाविक ही था। जापान के द्वीपों का एशिया के पूर्वी तट के प्रदेशों के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संपर्क है, जिसे उनके समुद्र तट के समीप स्थित होने से और भी प्रोत्साहन मिलता है। कम से कम तीन स्थानों पर, उत्तर में साखालिन, मध्य में क्यूशू और कोरिया तथा दक्षिण में फार्मोसा के पास, ये द्वीप बिल्कुल एशिया महाद्वीप के साथ मिल से गए हैं, इसलिए उनके बीच आवागमन अपेक्षाकृत अधिक आसान रहा है। इनमें से दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापानियों के पूर्वजों में से कुछ लोग कोरिया के मार्ग से ही इन द्वीपों में प्रविष्ट हुए थे। कोरिया के इसी मार्ग से होकर जापान में चीनी और भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा प्रभावित हुई। जापान के द्वीपों का अपने निकट महाद्वीप के साथ व्यापारिक संपर्क भी कोरिया मार्ग से ही सर्वाधिक सुगमता से हुआ। काराफूतों के मार्ग से ही उत्तर की कुछ आदिम जातियां, जो शायद आज की आइनू जाति के लोगों की पूर्वज रही होंगी, वहां आई। रियुकू द्वीपों के मार्ग से होते हुए कुछ मलय और संभवतः कुछ एशियाई तत्व भी जापान में प्रविष्ट हुए। एशिया से जापान के इस सामीप्य के कारण वहाँ के लोग महाद्वीप के मामलों में विशेष रुचि लेते थे। यहाँ उन्हें अपने वाणिज्यिक तथा प्रादेशिक विस्तार के लिए अच्छा क्षेत्र दिखाई दिया। साथ ही अपनी अतिरिक्त जनसंख्या के निकास की भी उन्हें यहाँ संभावना दिखाई दी। उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि जापान के अत्यंत समीप स्थित भागों पर शक्ति संपन्न विदेशी राष्ट्र प्रभुत्व न जमा सके। अतएव कोरिया के कारण उसने रूस और चीन से युद्ध किया और बाद में इसे अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही जापान ने चीन से आग्रह किया कि वह फार्मोसा के सामने तट पर स्थित फुकिन प्रांत पर किसी भी यूरोपीय देश को अधिकार न जमाने दे। उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया कि चीन के मामलों को तय करते समय उनकी राय को भी ध्यान में रखा जाए और उसके लिए चीन के साथ वाणिज्य के लिए द्वार खुले रखे जाएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एशियाई गणतंत्र में अपने स्थिति को इतना दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया कि युद्ध के बाद भी कोई उन्हें वहां से उखाड़ न सके। संक्षेप में, जापानी एशिया महाद्वीप में अपने को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करना तथा दूसरी विदेशी शक्तियों को यथासंभव एशिया से बाहर रखना चाहते थे। जापान के द्वीपों की लंबी श्रृंखला और उनकी एशिया के तट के निकट स्थित दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। प्रागैतिहासिक काल में कई विभिन्न स्थानों से विभिन्न जातियों ने उन द्वीपों में प्रवेश किया। इस प्रकार काराफूतों के मार्ग से साइबेरिया वासियों से मिलती जुलती जातियाँ और कोरिया के मार्ग से मध्य एशिया, चीन और कोरिया के विभिन्न जातियाँ तथा दक्षिण से मलय जातियाँ वहाँ पर आई। महाद्वीप के साथ अपने इन संबंधों के बल पर जापान एशिया के लगभग पूरे के पूरे पूर्वी तटीय प्रदेश पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो गए। अगर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ग्रेट ब्रिटेन उत्तर पश्चिमी यूरोप के समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने तथा उत्तरी अटलांटिक सागर की साम्राज्ञी का नाम पाने में समर्थ हो सका, तो जापान इससे भी कहीं अधिक भौगोलिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में होने के कारण एशिया के सुदूर पूर्व प्रदेशों में विदेशी वाणिज्य और नौचालन पर व्यापक नियंत्रण स्थापित करने की स्थिति में था। जापान की इस भौगोलिक स्थिति ने उसे सुदूर पूर्व के प्रदेशों के लिए पश्चिमी संस्कृति अर्थात यूरोप और अमेरिका की संस्कृति का प्रथम व्याख्याता बनाया। यह मात्र संयोग की बात नहीं कि इस भूखंड में जापान ही ने सर्वप्रथम पश्चिम के लिए अपने कपाट निसंकोच खोल दिए। एशिया और अमेरिका के मध्य स्थित जापान के बड़े बड़े बंदरगाह इस वाष्प युग में, जब प्रशांत महासागर में जहाजों का आवागमन शुरू हो गया था, पश्चिमी जगत के लिए खुली चुनौती थे। यह भी मात्र संयोग न था कि जापान ने कोरिया का मार्ग खोलने में पहल की और चीन में बहुत बड़ी संख्या में ज्ञान पिपासु जन जापान के विश्वविद्यालयों में विद्या प्राप्त करने के लिए आने लगे। भौगोलिक कारणों से जापान का ऐसा विश्वास रहा है कि इस नए युग में सुदूर पूर्व प्रदेश के मार्गदर्शन का भार उन्हीं पर है। जापान पर केवल उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके एशिया महाद्वीप के साथ संबंधों का ही प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु इसमें भूमिगत विशेषताओं का भी अपना महत्वपूर्ण योग रहा है। सर्वप्रथम, ये द्वीप पर्वत बहुल हैं। ये पर्वत शिखरों और पर्वत श्रेणियों द्वारा अत्यधिक खंडित हैं, जिसका कारण ज्वालामुखी और भूवलन है। इन द्वीपों का अधिकतर भूतल इसी प्रकार का है। यही कारण है कि यहाँ की भूमि के थोड़े भाग पर ही खेती की जा सकती है। फिलहाल जापान के क्षेत्रफल के लगभग 17% भाग का ही कृषि भूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संभवतः लगभग 10% भाग और कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यद्यपि इसमें अत्यधिक व्यय होने की संभावना है, इसका तात्पर्य यह है कि जापान में उत्पादित अन्न से जितनी संख्या का पोषण किया जा सकता था, वह सीमा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। फलस्वरूप देश की अतिरिक्त आबादी को अनिवार्य रूप से या तो देश से बाहर जाकर बसना होगा या ब्रिटेन के लोगों की तरह निर्माण और वाणिज्य के धंधों में लग जाना होगा। इसके अलावा जापान के बिल्कुल निकट विशाल महाद्वीप है। मंचूरिया, मंगोलिया और साइबेरिया में बाहर से आकर बसने वाले लोगों के लिए अनधिकृत भूमि भी पड़ी है। फिर चीन में मेहनत कश लोगों की अपार जनसंख्या है, जो माल की भारी खपत के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से हैं, और साथ ही जहाँ कच्चे माल का अपरिमित भंडार भी है, एशिया के लगभग सारे के सारे पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा होता है, और आगे चलकर इसके और अधिक अन्न उत्पादक क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अलावा जापान के पर्वत निर्माण कार्य के अधिक अनुकूल है, क्योंकि वे ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ कोयले का प्रचुर भंडार है और जहाँ की नदियों का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ कच्चे लोहे का अभाव है, लेकिन यह चीन और मंचूरिया में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये प्रदेश ऐसी नौगम्य नदियों के निकट ही स्थित है जो जापान को सीधे समुद्र मार्ग से मिलती है। जापान ने आग्रह किया कि निकटवर्ती महाद्वीप उसके लिए प्रवेश द्वार खुला रखे, और साथ ही उसने कुछ विशेषाधिकारों की भी मांग की। उनके लिए यह महाद्वीप खाद्य सामग्री प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत था। यहाँ उन्हें अपनी अतिरिक्त आबादी को देश से बाहर बसाने के लिए अनुकूल क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा यह उनके देश के निर्माताओं के सामान की खपत के लिए अच्छा बाजार था, और साथ ही यह कच्चे माल का भंडार भी था। इन सब चीज़ों की ही जापान को आवश्यकता थी। यहाँ के पर्वत द्वीपों को छोटी छोटी घाटियों और मैदानों में विभक्त करते हैं। यहाँ नौगम्य नदियाँ बहुत ही कम है, इसलिए प्राचीन काल में रेलगाड़ी, तार व्यवस्था तथा स्टीमर के आरंभ होने से पूर्व अंतः संचार व्यवस्था बहुत कठिन थी। अधिकांश पर्वत बहुल देशों के समान जापान भी छोटे छोटे वर्गों में बंटा हुआ था। फलस्वरूप प्रत्येक वर्ग केंद्र के नियंत्रण से मुक्त रहने लगा और सामंत तंत्र का और परिवार को महत्व प्रदान करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे। जापान को जलवायु का वरदान प्राप्त है। इसका अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहाँ से भूमंडल की महान सभ्यताओं का उदय हुआ। यहाँ एशिया के किसी भी देश की अपेक्षा चक्रवातों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे दिन प्रतिदिन के तापमान में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। यह मानव क्रियाशीलता और सभ्यता के विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होती है। जापान के तटों के कुछ भाग के साथ कृष्णधारा बहती है, जो उष्णकटिबंध से प्रभावित होने वाली महासागरीय उष्णधारा है। यहाँ वनस्पतियों का उत्पादन काफी होता है और कृषि योग्य भूमि में अत्यधिक अन्न पैदा होता है। यदि वहाँ की भूमि और जलवायु इतनी अनुकूल न होती तो वहाँ की विशाल जनसंख्या इतने अधिक समय तक कदापि आत्मनिर्भर न रह पाती। जापानियों में सौंदर्य प्रेम की भावना के विकास में अवश्य ही वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का भी हाथ रहा है। वहाँ की वनाच्छादित पहाड़ियों ने तथा पर्वतों व घाटियों एवं झीलों, बंदरगाहों और समुद्रों की विभिन्नता ने ही निश्चय ही लोगों में कलात्मक भावना को विकास करने में योग दिया होगा। यहाँ की भूमि प्राकृतिक दृष्टि से विश्व के सुंदरतम प्रदेशों में से है। यहाँ के निवासियों ने पुष्पों, पक्षियों, चंद्रिका में चमचमाती झीलों, नदी नालों और जलप्रपातों के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति करके अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है। इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों और अपनी विशेषताओं का यहाँ के निवासियों, उनकी सभ्यता और उनकी महत्वाकांक्षाओं एवं नीतियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है।